सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन। इस कीर्तन के मतलब सेंट्रल विषय क्या है, इसमें हम कैसे अपने भक्तिमय जीवन में भक्ति को अपनाए हासिल करें और कैसे हम प्रचार करें भक्ति को। और जब हम प्रचार करके लोगों को लाते हैं, उनको कैसे कृष्ण के पदकमल में आश्रित रखे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न पूछा था, क्या ये इस्कॉन घर है, इस्कॉन ऑफिस है? तो आप लोगों ने हाथ ऊपर की थी कि इस्कॉन घर भी है, ऑफिस भी है। तो इस्कॉन में ऑर्गेनाइजेशन भी है और इस्कॉन में जिस तरह घर में प्रेम मिलता है और घर में सुरक्षा मिलता है एक व्यक्ति को, इस तरह इस्कॉन संस्था के अंदर भी लोगों को इस तरह की ख्याल और सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए। तो इसके संबंध में कल हमने जो चर्चा की थी, उस चर्चा को आज हम जारी रखने वाले हैं, उधर से जिधर हमने छोड़ा था। तो ये भक्ति वृक्ष सिस्टम के द्वारा आप लोग इधर जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों को आपके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होगा उसके अनुसार वो लोग निर्णय लेंगे, क्या हमको जुड़कर रहना है, नहीं तो छोड़कर चले जाना है। क्योंकि आप देखेंगे, आप उस दुकान में जाओगे जिस दुकान में दुकानदार आपके साथ प्रेम के साथ आदान प्रदान करता है आपके साथ अच्छी तरह, तो उस दुकान में जाकर आप खरीदना चाहोगे। अगर कोई दुकान में कोई चिल्लाता है तो वापस आप जाना जाने के लिए मन नहीं करता आपको, है कि नहीं? इस तरह इधर भी जो आते हैं इस्कॉन में, और भी अनेक संस्थाएं हैं आजकल, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, बहुत कुछ आ गए हैं। तो हम इस्कॉन में लोगों को किस तरह का अनुभव प्रदान करेंगे, उस अनुभव को लेकर लोग आना चाहेंगे नहीं तो नहीं आना चाहेंगे, तो ये आप लोगों के हाथ में है। नागपुर का कम्युनिटी कांग्रीगेशन कितना बड़ा है, बढ़ेगा, कितने लोग आकर जुड़ेंगे, तो किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर निर्भर है। जैसे एक पेड़ के, पेड़ में अगर बहुत अच्छे अच्छे पके हुए फल है, आम पके हुए आम है, नहीं तो पका हुआ कुछ फल है, तो उसको खाने के लिए बहुत कुछ पंछियाँ आ जाते हैं, रंग बिरंगे पंछियाँ आएंगे, कलरव करेंगे, खाएंगे और उनको मिठास मिलता है, तो वो छोड़कर जाएंगे नहीं कभी, हमेशा के लिए ठहरेंगे वो। इतना ही नहीं, अगर वो छोड़कर बाहर भी जाएंगे तो आकर और पंछियों को लेके आएंगे वो, आओ इस पेड़ में देखो कितना अच्छे फल है। तो हमारे सब भक्तों को परिपक्व भक्त बनना है हम सबको। जैसे आम में कच्चा आम भी होता है, देखा ना आपने, कच्चा आम जो होता है वो हरा होता है और उसको आप मुँह से दांतों से इसे काटोगे तो दांत में आपको कुछ अनुभव होता है, आपको अच्छा नहीं लगता वो कच्चा आम, है ना? इस तरह से नवसिक्या भक्त है कच्चा आम के बराबर, पक्व भक्त है वो पक्के आम के बराबर। आप लोगों में से कितने लोग पक्का आम पसंद करते हो, पक्के आम? कितने लोगों को कच्चा आम पसंद है? बहुत कम। कच्चा आम से कुछ जूस बनाते हैं ना, कच्चा आम का जूस, क्या बोलते हैं उसको? फिर भी पक्का आम बहुत मिठास ज़्यादा है उसमें। इस तरह हम भी परिपक्व भक्त बनेंगे तभी हम इस संस्था में अनेक लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। तो आज जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, ये परिपक्व भक्त बनने के लिए हमें कुछ उपाय मिलेगा, हमें उन उपाय को लेकर हम भक्ति वृक्ष को एक्सपैंड करते समय इन चीज़ों को याद रखते हुए अगर हम प्रचार करेंगे, उससे लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। देखिए, चार चीज़ इधर बताए जा रहे हैं। ये एक भक्ति वृक्ष लीडर, काउंसलर, जो भी हो, उसके अंदर ये चार योग्यता होना चाहिए। उनकी कृष्ण भावनामृत कैसा है, वो दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनके व्यक्तिगत गुण क्या क्या है, और वो इस्कॉन को कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं। चार चीज़ है। पहला है उनके कृष्ण भावनामृत कैसा है। ये बताया जा रहा है कि तो आज सुबह भी मैंने इसके बारे में बताया कि भगवान कृष्ण को हम कैसे देखते हैं, उसके इस भावना के साथ हम देखते हैं, हमारा नाम पुकारना भी उसके अनुसार है। तो हम भगवद गीता भागवत को अच्छी तरह पढ़ेंगे। कृष्ण के बारे में तीन विषय जानना चाहिए हमें। कृष्ण परम तत्व है, उसका परम तत्व का मतलब क्या है, उनसे समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो आध्यात्मिक भौतिक दुनिया का स्रोत है कृष्ण है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते। दूसरा है कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियों का उद्गम स्थान है, जैसे दुर्गा शक्ति, बहिरंग शक्ति, राधा रानी, लक्ष्मी, सीता, वो सब भगवान के ही शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ये सब शक्तियां भगवान से ही आते हैं, शक्तिमान है। तीसरा है भगवान अखिल रस अमृत मूर्ति है। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं बस, अगर कोई गलत करता है तो नरक में भेजते हैं बस, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जैसे अर्जुन के रथ को चलाने वाले भगवान है, उनका नाम क्या है, पार्थसारथी जैसे बोलते हैं। तो यशोदा के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम क्या है, यशोदा दुलाल, यशोदा नंदन ऐसे बताते हैं। तो गोपियों के साथ रास नृत्य करने वाले हैं, उनका नाम क्या है, रस बिहारी ऐसे। तो भगवान इस तरह विदुर जी के साथ, यशोदा के साथ, गोपों के साथ ऐसे प्रेम का, वो अकेले रस अमृत मूर्ति बोलते हैं उनका, परम तत्व, सर्वशक्तिमान, अकेले रस अमृत मूर्ति, ये तीन चीज को गहराई से समझना चाहिए भक्त को। कि मेरा एकमात्र व्यक्तिगत रूप है कि मैं भगवान का दास हूँ, जैसे माता जी बता रही थी सुबह, हम सब भगवान के दास हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज कल के सुबह के सत्र में इस विषय के ऊपर जोर दे रहे थे कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो मिटने वाली चीज़ है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, और भगवान का नित्य दास है आत्मा। इस बात को जो गहराई से जानता है वही व्यक्ति नाम जप पाएगा ठीक तरह से। तो वो पहला चीज़ बताया जा रहा है। और भगवान की भक्ति से जब हम प्रभावित होते हैं, आपको मालूम है नारद जब छोटे लड़के थे, एक दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, तो उस समय उनके गांव में कुछ भक्ति वेदांत लोग आकर 4 महीने के लिए रहे, तो चतुर्मास के समय। तो उनके माँ, नारद मुनि की माँ ने बोला कि तुम जाकर प्रसाद परोसो उनको, सेवा करो। तो साधु महात्माओं की सेवा करते करते कथा भी श्रवण करने की मौका मिली उनको, तो उनके भक्ति जागृत हो गया। इस तरह हमारे जीवन में भी हमें भगवान के भक्तों की भक्ति से हमारे हृदय प्रभावित होना चाहिए। तो जैसे आप लोग इधर इस संस्था में जुड़कर आप भक्ति वृक्ष कर रहे हो, इसका कारण क्या है, भक्तों की भक्ति से आप प्रभावित हुए हो। और जितना हम प्रभावित होते हैं, और विष्णु व्रतों को हमें बहुत गंभीरता से स्वीकारना चाहिए। विष्णु व्रत का मतलब क्या है, मैंने ऐसे एक कथा सुना, ये पद्म पुराण का एक कथा है, कि एक दिन कार्तिक महीने में सुबह एक ब्राह्मण अपने हाथ में ताली लेकर एक विष्णु के मंदिर की ओर जा रहा था। उस ताली में तुलसी का दल था, गंगा जल था, फूल था, फल था, अगरबत्ती था, घी लैंप वगैरह सब रखा था उसने। तो सुबह का टाइम था, जैसे 4:30-5 बजे का समय था, अंधकार भी था। तो ऐसे सड़क में चलते चलते अचानक उसने देखा सामने कोई पिशाच जैसे कोई स्त्री आ रही थी सामने। तो ये ब्राह्मण डर गया, तुरंत अपने हाथ में जो ताली था उसको ऐसे उसके चेहरे के ऊपर ऐसे फेंक दिया उसने। तो अचानक वो गंगा जल उसके सर के ऊपर गिर गया और तुलसी दल उसके आंखों में माथे के ऊपर जाकर गिर गया वो। अचानक उस स्त्री का रूप बदल गया, बदलकर एकदम सुंदर स्त्री बन गई वो। और वो दंडवत प्रणाम किया इस ब्राह्मण को और वो बोली कि हे ब्राह्मण, मैं बड़ा महापापी स्त्री हूँ, लेकिन आपने जो भी पदार्थ मेरे चेहरे के ऊपर फेंका उसके कारण मेरा कुरूप शरीर बदलकर एक खूबसूरत सुंदर शरीर मुझे प्राप्त हो गया मुझे, ऐसे बोली वो। तो वो अपनी कथा बोली, वो बोला कि मेरे पूर्व जन्म में मैं ऐसे एक स्त्री थी, मैं बहुत आलसीपन करने वाली स्त्री थी, घर में कुछ कुकिंग नहीं करती थी, सब गंदगी पड़ा था घर में, सफाई नहीं करती थी। इतना ही नहीं, मैं पड़ोस के घर में जाकर खाती थी अलग अलग घरों में, लेकिन घर में कुछ बनाती नहीं थी। इसलिए पतिवर जो है वो बहुत हताश हो गए, मुझे बोल बोल कर मुझे सुधार नहीं पाए। इतना ही नहीं, मैं पति को बहुत तीक्ष्ण शब्दों से उसको डांटती थी, इतना चिल्लाती थी। एक समय मेरे पतिवर ऐसे आत्महत्या कर लिया, वो ये सहन नहीं कर पाया। तो वो बोले कि तो इसके कारण मेरे तकदीर में ऐसे लिखा था कि मुझे एक बिल्ली का शरीर मिलेगा और बंदर का एक शरीर मिलेगा, उसके बाद एक मानवी एक मनुष्य का शरीर मिलेगा। मुझे तीन जन्म था मेरे अकाउंट में। क्यों? क्योंकि बिल्ली चुपके चुपके जाकर दूध पी लेती है, इस तरह मैं दूसरे लोगों के घर में जाकर चुपके से खा लेती थी मैं ऐसे इस तरह। तो इस तरह बंदर हमेशा डिस्टर्ब करता है दूसरों को, इस तरह मैं पति को बहुत डिस्टर्ब किया। इस तरह मुझे बंदर का शरीर मुझे मिलना था, मुझे उसके बाद स्त्री का शरीर मुझे मिलेगा। लेकिन वो आत्महत्या करने के बाद मैंने भी आत्महत्या कर ली, इसके कारण मैं एक पिशाच बन गई। और मुझे बहुत भूख लगी और बहुत प्यास था, मैं घूम रही थी, क्योंकि किसी के शरीर के अंदर घुसकर ही मैं खा सकती हूँ पी सकती हूँ। एक धनी मोटा बनिया जा रहा था हरिद्वार की ओर, तो मैं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर ली। तो वो जो भी होटल में खाता था मैं भी खाई, वो जो पीता था मुझे भी अच्छा लगा वो। लेकिन बेचारा वो जब हरिद्वार के अंदर घुसा, मैं अंदर जा नहीं पाया, हरिद्वार है ना, इसलिए मुझे निकलना पड़ा उसको। अभी मैं घूम रही थी इधर उधर पिशाच बनकर, कोई है क्या, किसके शरीर में घुसकर मैं खा सकती हूँ पी सकती हूँ, मुझे प्यास लग रहा है ऐसे। तो आपको देखा, लेकिन आपने ये सब पदार्थों को कोई पता नहीं क्या फेंका आपने, लेकिन फेंकने के बाद हमारा शरीर बदल गया, इस तरह शरीर प्राप्त हुआ है। तो मैं आप बहुत धन्य बन गई आपके दर्शन से और इससे। तो ब्राह्मण उसको बोला, मैंने पीछे दोहरा वो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब लोग बोलिए वासुदेव। तो वो भी दोहराया उन्होंने, तो तीन बार ऐसे दोहराया, इतने में वैकुंठ एरोप्लेन आ गया नीचे, हाँ वैकुंठ से। तो वैकुंठवासी लोग बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने गंगा जल और तुलसी को इसके ऊपर फेंक कर पहले पवित्र कराया, लेकिन अभी जो मंत्र दिया आपने, कृष्ण का मंत्र, इसको इस मंत्र के कारण, मंत्र के उच्चारण इतने भावना के साथ किया स्त्री ने, इतने एक प्यास के साथ किया इन्होंने, इसके कारण इनको तुरंत वैकुंठ पदवी भी प्राप्त हो गया। और इनको बिल्ली का और बंदर का और स्त्री का जन्म सब रद्द हो गया इनको, अभी हम इनको लेके जा रहे हैं वैकुंठ लोक में लेके जा रहे हैं। तो उस समय वो स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगा, वो बोली इस ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हो और आपके मंत्र देने से, आपके शिक्षण से इतने कम समय में मुझे भगवान की प्राप्ति हुई और मेरे पिशाच के शरीर निकल गया और चित्त शुद्ध हो गया और बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त हो गई मुझे, तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, ब्राह्मण को तीन बार प्रदक्षिणा की और वैकुंठ एयरप्लेन में बैठकर उनको लेके गए वो लोग वैकुंठ वास के लिए। तो वैकुंठ वासी ऊपर उड़ने के पहले इस ब्राह्मण को बोले, हे ब्राह्मण, तुम तो वैकुंठ में रहने के लिए ऑलरेडी आप लायक हो इसके भी पहले, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि आप, भगवान ने बोला कि आपको इस दुनिया में और 30 साल रहना चाहिए, क्योंकि आपको प्रचार काम करना है, प्रचार काम करके और भी लोगों को वैकुंठ में भेजना है, इसलिए आप रहो, इस तरह बोलकर वैकुंठवासी उस स्त्री को लेकर गए ऊपर। तो उसके बाद ये ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और विष्णु की मंदिर की ओर गया। तो ये ब्राह्मण कार्तिक महीने में जाकर हर दिन विष्णु व्रत करता था। विष्णु व्रत का मतलब है भगवान के मंदिर में आकर घंटी बजाना, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान को आरती चढ़ाना, भगवान को प्रदक्षिणा करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवद्गीता भागवत को सुनना। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदापि येन मुरारी समर्चा భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ये बताते हैं शंकराचार्य भजगोविंदा में, तीन चीज अगर कोई व्यक्ति करता है, अगर कोई गंगा जल को रोज छूता है पूजा के लिए, और अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को खोल कर एक श्लोक भी पढ़ लेता है रोज, हाँ, और किसी सत्संग में जाकर बैठता है जिधर मुरारी समर्चा भगवान कृष्ण की चर्चा होता है, जाकर बैठकर सुनता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज के दूतों के साथ कुछ वाद विवाद नहीं करना पड़ेगा. मेरा अकाउंट दिखाओ, कितना पाप किया मैंने, आप लोग क्यों आए हो, इस तरह बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यमदूत आएंगे ही नहीं उसको. उसको वैकुंठ लोक से वैकुंठवासी आकर लेके जाएंगे वैकुंठ में उसको, ऐसे बताते हैं शंकराचार्य जी तीन चीज. तो इस तरह ये ब्राह्मण भी सब विष्णु व्रतों को करता था. और इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने क्या किया है, रूप गोस्वामी के 64 विष्णु व्रतों को दिया है ना? और उनमें से अगर आप मंगल आरती से लेकर आप कार्यक्रम अटेंड करेंगे किसी भी मंदिर में, आपको 42 विष्णु व्रत पूरे हो जाएंगे भागवतम क्लास तक. सुबह मंगल आरती अटेंड करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और फूल को सूंघना, और चरणामृत को पीना, और भगवान की आरती को लेना, ऐसे इस तरह आपको सब विष्णु व्रत ऑटोमेटिक हो जाएंगे इस्कॉन के मंदिर में आपको ऐसे. इसलिए विष्णु व्रतों को करने में किसी को कभी आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए. हाँ, तो मैं बता रहा था कुछ समय के पहले कि हम इस तरह विष्णु व्रतों को अगर हम करेंगे, भगवद गीता का पाठ, भागवत का श्रवण, हाँ, और इस तरह नामों का उच्चारण, भक्तों के संग में रेगुलर नियमित रूप से आना, इससे हमारे मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और कृष्ण के ऊपर दृढ़ भक्ति प्राप्त होगा हमें. इस तरह बताते हैं दूसरे पॉइंट, बी कमिटेड टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें पूर्ण तरीके से समर्पित होना. कमिटमेंट का मतलब है, हम अभी मैराथन आ रहा है, हम 100 भगवद गीता वितरण करेंगे. अभी दामोदर महीना आ रहा है, हमारे घर में एक दामोदर फेस्टिवल मनाएंगे, हमारे घर में भक्तों को भेजिए आप ऐसे. अभी यात्रा आ रहा है, अगर गुरुजी यात्रा लेके जा रहे हैं, यात्रा में हम जाएंगे और भी भक्ति प्राप्त करेंगे. जन्माष्टमी आ रहा है, हम भी कलेक्शन करेंगे जन्माष्टमी के लिए. सब लोग कलेक्शन कर रहे हैं, हम भी कलेक्शन करेंगे. रथ यात्रा मना रहे हैं, हम भी रथ यात्रा के लिए कुछ सेवा करेंगे. तो इस तरह अगर मंदिर में बोल रहे हैं कि फेस्टिवल मना रहे हैं, आप लोग 56 भोग लेके आओ, जो भी लेके आना है भोग लेके आओ, घर से भोग बनाकर लेके जाना. बोलने का मतलब क्या है, हम लोग अपने जीवन में उत्साही रखना कुछ भगवान से संबंधित सेवाओं को अपनाने के लिए.